कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का, जो इसराइलियों द्वारा सिने पर्वत से आरंभ की यात्रा को कनान की सीमा मुआब के मैदान तक की यात्रा से जोड़ती है। आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है,
हारा है।
यीशु ने उसको मारा है,
मारा है।
यीशु ने खून बहाया है,
बहाया है।
यीशु ने हमको बचाया है,
बचाया है।
यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा।
पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो।
डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है,
सच्चा है।
जो भी वो कहता है होता है,
होता है।
यीशु यहोवा रब्बा है, यीशु खुदा का है बेटा।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के वचन देख लो, पढ़ के वचन देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा व्यवस्था के अधीन महिला का स्थान और मूसा का उत्तराधिकारी यहोशु, और आज हम आगे देखेंगे 28 अध्याय उसके 3 पद से आगे। लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन से मनन चिंतन करते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों और हृदय को, हमारे विचारों को और एकाग्रतापन को हमें दे, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हमारे हृदयों से साक्षात बातचीत करने पाए, हमारे जरूरतों के मुताबिक हमसे बात करे ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। हमारी प्रार्थना है हर एक भाई बहनों के लिए, विशेष करके जो दुखी हैं, निराश और चिंताओं में हैं, परेशानी और तनाव में है, जीवन के लिए, नौकरी के लिए, अपने विवाह के लिए प्रभु आप उन पर कृपा दृष्टि करें, ताकि हर एक जीवन आपकी निकटता में आप पर भरोसा कर सके, आप पर विश्वास कर सके। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी आप हम सब की सहायता करें। प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए अब हम गिनती की पुस्तक 28 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। और तू उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये हैं, अर्थात नित्य होमबलि के लिए एक एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करना। मेरे मित्रों होमबलि मसीह के व्यक्तित्व का प्रतीक है। सब कुछ धुएं में उड़ गया और परमेश्वर तक पहुंच गया। भेंट बलिदान का यही पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 29 में भेंट बलि के नियमों का लगातार वर्णन है। आनंद के इन विशेष अवसरों पर, पवित्र दिन, पर्व के दिन पर परमेश्वर लोगों को अपने निकट आमंत्रित करते हैं। अब हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक 29 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का काम काज न करना। मेरे मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, लय व्यवस्था में दिए गए नियमों का यह दोहराया जाना है। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। इसे हम लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय और उसके 27 पद में पाते हैं। मित्रों इस अध्याय का अंत झोपड़ियों के पर्व के नियम से होता है। उनके पाप के लिए होम बलि और पाप बलि की चर्चा है तथा उसके साथ अन्न बलि, मेल बलि भी चढ़ाना होगा। इन दो अध्यायों में हमारे सीखने के लिए अद्भुत बातें हैं। मित्रों आप और मैं पापी हैं, यद्यपि चाहे आपको इसका ज्ञान हो या ना हो फिर भी आप पापी हैं। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि हम पापी हैं और हमें एक उद्धारकर्ता अर्थात मुक्तिदाता की आवश्यकता है। हमें यीशु मसीह चाहिए, एक मुक्तिदाता जो हमारे लिए मरा और हमारे पापों के प्रायश्चित की कीमत चुकाई। मेरे मित्रों पाप के कारण ही संसार में दुख आया, पाप के कारण ही आंसू बहाना और हृदय का टूटना होता है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है। मुझे खुशी है कि उसे पाप से घृणा है। परमेश्वर आज आगे बढ़ रहा है और निसंकोच होकर बिना किसी हिचकिचाहट के और पाप के विरुद्ध किसी भी तरह समझौता नहीं करने के द्वारा वह इस संसार से पाप दूर भगाना चाहता है। इससे वह कभी भी समझौता नहीं कर सकता। वह मेल के श्वेत वस्त्र धारण नहीं करेगा। उसने इसे मिटा देने का दृढ़ संकल्प किया है और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ मेरे और आपकी संगति को चूंकि पाप ने तोड़ रखा है तो पाप के लिए शोक करने का भी समय चाहिए। पिछली बार कब आपने अपने पापों के लिए रोया? क्या आप परमेश्वर के समक्ष जाकर अपने पापों के लिए रोए? आपकी असफलताओं के लिए या उदासीनता के लिए खेद प्रकट किया? कितना आवश्यक है कि आज ही हम इसका अंगीकार करें। यह इसलिए नहीं कि परमेश्वर बहुत ऊंचा है और हम नीचे हैं या वह महान है और हम दीन नहीं हैं, क्योंकि वह अनंत है और हम उसके बहुत दूर हो गए हैं। वह कहता है कि तुम्हारे पापों ने तुमको मुझसे दूर कर दिया है और यही रोने का समय है। मित्रों मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं सेवकाई के लिए 1990 में प्रभु को समर्पित किया और उसी समय से प्रभु की सेवा में हूं। मानव दृष्टिकोण से अनेक मंडलियों में बहुत सफल भी रहा, सदस्यों की उपस्थिति में बढ़ती हुई और बाइबल अध्ययन में भी विशेष रुचि रही, नवयुवकों में नया उत्साह और जोश और लोगों के बीच में बढ़ते रहे। आप पूछेंगे क्या यह आनंद करने की बात नहीं है? मैं अंगीकार करता हूं कि इससे मुझे खुशी नहीं है। जब मैं मुड़कर के देखता हूं तो अपनी असफलताओं को और अपने उन कमजोरियों को देखने पाता हूं और यह मेरे सामने बिल्कुल साफ है। कृपया आप मुझे गलत न समझें। मैंने कभी किसी को मार नहीं डाला या व्यभिचार भी नहीं किया, परंतु अपने मुक्तिदाता को अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाया, अर्थात रुष्ट किया, और अनेक बार भी उससे इसका अंगीकार भी किया। जब मुझे उसकी संगति चाहिए थी, मैंने अनेक बार और अनेक बातों से वाधित होकर अपने आप को अलग किया। मेरे लिए यह एक रोने का समय था, यहां तक कि आज तक भी रोता हूं। परंतु परमेश्वर उसके लोगों को खेत का जीवन नहीं देना चाहता है। केवल एक दिन ही खेत प्रकट करने का होना चाहिए और बाकी सब दिन खुशी अर्थात आनंद मनाने का हो। वहां होम बलि, पाप बलि, अन्न बलि, मेल बलि थे। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्रायश्चित किया। उसकी कितनी आवश्यकता थी हमें। सबसे अधिक जोर होम बलि पर दिया गया है, जिसे नित्य प्रति तथा पर्व के दिनों में भी चढ़ाना था। मित्रों, परमेश्वर अपने पुत्र से प्रसन्न था, और सभी विवरण विस्तार पूर्वक हमारे उद्धारकर्ता की बात करते हैं। यह कितना अद्भुत है। वह सुखदायक सुगंध हव्य बलि के सदृश है। वह है भी, क्योंकि वह अन्य बलि भी है। यह वह जो उसने किया है, वह हमारे लिए पाप बन गया, जो पाप को जानता भी नहीं था। मित्रों, मैं पापी हूं, परंतु वह मेरी खातिर मरा कि मैं उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। उसने धरती पर आकर मेरा स्थान ले लिया और मुझे स्वर्ग पर अपना स्थान दे दिया। प्रिय मित्रों, यदि आज आप बच जाते हैं, तो मसीह का जो अधिकार स्वर्ग पर है, वह आपका भी बन जाता है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आपके पास वहां रहने का अधिकार है? यदि आपके पास उसका अधिकार प्राप्त नहीं, तो वहां आपका कोई भाग नहीं होगा। वास्तव में आप वहां नहीं होंगे। हम उस प्रिय के द्वारा ही स्वीकारे जाते हैं। इसी आधार पर परमेश्वर हमें ग्रहण करते हैं। यदि आप उसमें हैं, तो इससे अधिक कुछ और नहीं। कितनी सुंदर और मधुर बात है कि हम उसके पास हों। मित्रों, यहां पर अध्याय 29 समाप्त होता है, और हम अपने अध्ययन को अध्याय 30 से जारी रखेंगे। इसका विषय है मन्नत व्रत मानने के नियम। भेंट बलिदानों के नियम के पश्चात मन्नत मानने के नियम दिए गए हैं। इस अध्याय में दिए गए नियम विशेष रूप से स्त्रियों के संबंध में हैं। हमने देखा था कि स्त्रियों को पिता की संपत्ति में भागीदारी बनने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब स्त्रियों को अधिक जिम्मेवारी भी सौंपी गई है। मन्नत शपथ खाकर उसे तोड़ा नहीं जाता। लय व्यवस्था की पुस्तक में एक पूरा अध्याय मिलता है, जिसमें परमेश्वर इन मन्नतों के महत्व एवं उनके पालन पर विशेष ध्यान देने को कहते हैं। वह उसके बच्चों को चेतावनी देते व उनके शपथ व्रतों को पालन करने में सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसकी मन्नतों के लिए उत्तरदायी ठहराता है। इसलिए मूर्खतावश अर्थात बिना सोचे समझे शपथ लेने की चेतावनी दी गई है। मेरे विचार से प्रभु से बहुत अधिक प्रतिज्ञा करने में आज भी काफी खतरा हो सकता है। जब मैं अपने सेवकाई के अंत में हूँ और मैं लोगों से ईश्वर के प्रति मन्नत मानने को प्रोत्साहन नहीं देता, तो केवल यह कि यीशु को प्रभु अर्थात मुक्तिदाता जानकर ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़ी तादाद में अर्थात बहुत बड़ी भीड़ में लोगों को वेदी के सामने अपने जीवन में अपने आप को समर्पित करते देखा, फिर उससे मुकर गए। परमेश्वर हमसे मन्नत मानने को नहीं कहता है। यह स्वेच्छा से होता है, इसमें कोई दबाव नहीं है। परंतु यदि शपथ लेते हैं, तो परमेश्वर इसे गंभीरता से लेते हैं और हमें उसे पूरा भी करना होगा। यदि हम नहीं करते हैं, तो यह हमारे लिए खतरा बन जाता है। हम गिनती की पुस्तक 30 अध्याय उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। फिर मूसा ने इसराइली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, वह अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो, उसके अनुसार वह करे। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि यह वर्तमान में हम मसीहों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौलुस को स्मरण था जब उसने कहा रोमियों की पत्री 10:9-10 पद में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मित्रों, यीशु पर आप कैसे विश्वास करते हैं? हृदय से? और तब क्या होता है? अंगीकार मुंह से किया जाता है। मुंह से अंगीकार करना ही आपकी मन्नत, शपथ या व्रत होता है। यही आपके विश्वास का वक्तव्य भी है। मुंह से कुछ कहना अधिक मायने नहीं रखता, परंतु हृदय से विश्वास करना भी जरूरी है। जब इन दोनों में सहमति होती है तो कहा है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मित्रों, आप मुंह से विश्वास नहीं करते पर मुंह से बोलते हैं, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार होता है। मुंह और मन दोनों ही एक सुर में होना चाहिए, तभी वे संग गा सकेंगे। यही शपथ व्रत के मामले में भी होता है। किसी महिला की मन्नत उसके पिता अथवा पति पर निर्भर है। आइए हम आगे पढ़ते हैं, गिनती 30 अध्याय उसके 3-4 पद में। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर से रहते हुए यहोवा की मन्नत माने वा अपने को वाचा से बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत वा उसके वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। मित्रों, यदि कोई स्त्री जो अकेली हो एवं पिता के घर में मन्नत मानती हो तो उसके लिए पिता ही जिम्मेवार है। यदि शपथ व्रत लेते पिता खामोश रहता है तो व्रत सही ठहरता है। तो भी यदि पिता कहता है कि ठहरो, इसने वस्त्र खरीदा है पर मैं उसका भुगतान नहीं करूंगा, तो वह इस मामले में सुरक्षित नहीं है। ऐसी मन्नत मान्य नहीं होगी। हम गिनती की पुस्तक 30 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको बरजे, तो उसकी मन्नतें व और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। तब क्या होता है यदि महिला विवाहित है? हम आगे देखते हैं, गिनती की पुस्तक उसके 30 अध्याय और उसके 6-8 पद में। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने वह बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए, यदि स्त्री बाहर जाकर अनेक बहुमूल्य वस्तुएं खरीदकर अपने को कर्जे में डालती है तो उसका पति इसकी आज्ञा नहीं देता है और न भुगतान के लिए तैयार होता है, तो मन्नत ग्रहण योग्य नहीं है और न ही पति की कोई जिम्मेवारी बनती है। इस प्रकार किसी स्त्री द्वारा शपथ अर्थात व्रत के लिए उसका पिता अथवा पति का उत्तरदायित्व तो होता है, जब तक कि वह तुरंत इसे अस्वीकार न कर दे। मेरे मित्रों, आधुनिक काल में इस सिद्धांत को अक्सर अवहेलना की जाती है। कई स्त्रियां पैसे से खेलने वाली हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह करती हैं जो बहुत पैसे वाला है। अक्सर इसे कम आयु की स्त्रियां अधिक उम्र के पुरुषों से विवाह संबंधों में देखा जा सकता है। जब उसे उसका नाम मिल जाता तो वह कोर्ट कचहरी में जाकर जितना चाहे पैसा ऐंठ लेती है। एक मसीह व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु से अकेला महसूस करता है और एक ऐसी महिला से विवाह कर लेता है जो धन की प्यासी थी। इस व्यक्ति ने अपना सारा पैसा परमेश्वर की सेवा कार्य और मसीही संस्थाओं के नाम में जमा कर दिया था, परंतु इस विधवा ने उसकी वसीयत को तोड़कर सारा पैसा अपने नाम कर लिया। कई विवाहित पुरुषों ने भी इसी प्रकार की घटना का वर्णन किया है, पर यह तो मानव की मूर्खता ही कही जाएगी। परमेश्वर कहता है कि मानव को इस प्रकार की बातों की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। आइए अब हम आगे देखें। विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री की मन्नत मान्य है। गिनती की पुस्तक 30 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, फिर विधवा व त्यागी हुई स्त्री की मन्नत व किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो तो वह स्थिर ही रहे। मित्रों, विधवा को उसके पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उसकी मन्नतें मान्य है। ध्यान दे कि परमेश्वर के लिए विस्तार से वर्णन कितना महत्वपूर्ण है, उसकी चाहत की उसके लोग सदैव ही उनके वचनों के पालन करने में भले बने। परमेश्वर अपने शपथ पूरी करता है और ऐसे ही आशा अपने लोगों से भी करता है। उसने इब्राहिम से वाचा बांधी, उसने दाऊद से प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा शपथ के पीछे दृढ़ रहा, उसकी भूत वर्तमान और भविष्य की सारी प्रतिज्ञाओं पर वह खरा उतरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे मित्रों, यह परमेश्वर का वचन है। उसने शपथ खाई है कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वह आपको बचाएगा और उसका वायदा अटल है। एक छोटी कद की महिला के एक अविश्वासी पुत्र था जो नए विचारों के साथ घर लौटा और अपनी माँ से बोला, तुम्हारी आत्मा का इस ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है। उसने सोचकर जवाब दिया, बेटा मैं जानती हूँ कि मेरे आत्मा की कोई कीमत नहीं, परंतु यदि मेरी आत्मा खो गई तो मेरे से अधिक हानि परमेश्वर को होगी। परमेश्वर उसके प्रसिद्ध नाम को जोखिम में डालेगा क्योंकि उसने कहा कि यदि मैं भरोसा करूंगी तो वह मुझे बचाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर उसके वचन का पालन करेगा, उसे शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल कहना ही उसके लिए काफी है। उसके जो लोग धरती पर हैं उनसे वह यही अपेक्षा करता है, यदि वे मन्नत मानते या शपथ लेते अथवा व्रत रखते तो उसका अवश्य पालन करना चाहिए। वर्तमान में इस संसार में रहने वाले मसीहियों में इस उत्तरदायित्व को पूरा करने की क्षमता होना चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम जो मसीही हैं कई बार इसे पूरा करने में असमर्थ हैं। कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और अपने कार्यों को पूरा करवाने के लिए मन्नत मानते हैं, अर्थात हम उसे शपथ खाते हैं लेकिन हम उसे पूरा नहीं करते। हम नए नियम की पुस्तक में जानते हैं हन्ना और सफीरा के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में अपने धन को देने का वायदा किया परंतु अपने लिए कुछ रख छोड़ा और उसका परिणाम हम जानते हैं कि दोनों की मृत्यु हो गई। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता कि आप उससे वायदा करें और उसे पूरा न करें। वह चाहता है कि आप जैसे हैं वैसे ही उसके पास में आए और आप यदि कुछ वायदा करते हैं तो उसका पालन भी करें क्योंकि वह आपसे प्रसन्न होगा। विशेष रूप से वह चाहता है कि आप अपने जीवन को प्रभु को सौंप दें, तब प्रभु आपके जीवन में आएंगे और अपनी शांति और अपने आनंद से आपको भरपूर करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कहीं ऐसा व्रत तो नहीं रखा है या मन्नत तो नहीं रखा है जिसे आपने पूरा नहीं किया है? मेरे मित्रों, अगर ऐसा कुछ आपसे गलती हुआ है तो आज ही प्रभु के पास आएं। आप अपने पापों के लिए अर्थात उन गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे क्योंकि वह क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और आज के इस अध्ययन के प्रकाशन में अपने जीवन को जांचें और देखें क्या हमने वायदा करके प्रभु को धोखा दिया है, क्योंकि हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं जिसे हम धोखा दे सकें। मेरे मित्र, वह सब कुछ जानता है। आइए हम उसके सम्मुख आएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से आपने हमसे फिर से एक बार बातचीत किया है और हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि हमें व्यर्थ में मन्नत अर्थात व्रत नहीं रखना है। यह सच है प्रभु कि कई बार हम मन्नत मानते हैं और उससे पूरा नहीं कर पाते और आपको धोखा देते हैं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने शपथ खाई, व्रत माना और उसे पूरा नहीं किया। प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, उनके जीवन में एक बार और उन्हें मौका दे ताकि वे आपकी निकटता में आकर उन महान सच्चाइयों को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। इस वक्त फिर से एक बार हम सबको, विशेष करके हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय निर्णय ले रहे हैं, प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यू कहा था मरियम ने रोकर, यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यू कहा था मरियम ने रोकर, यहाँ अगर तू है रब्बी होता हमारा भाई लाजर न मरता। कहा यीशु ने, ए लाजर,
ए लाजर,
आ निकल कब्र से बाहर, चार दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के कलाम देख लो।
यहोवा राजा के जैसा हुआ ना कोई, होगा ना कोई, यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ ना कोई, होगा ना कोई। यहोवा शमा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा येरी, जल्द यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा, खुदा के पास हमारे लिए उसने घर है बनाया।
पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के वचन देख लो,
पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो,
पढ़ के कलाम देख